ஞானஞ்சனசலாகய சக்ஷோருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஃ. குரவே கௌரசந்திராய ராதிகாயை ததாலயை கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணபக்தாய சதபக்தாய நமோ. வஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருதாஸ்நிதுப்யைவ பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்யம் நம்மே கௌரத்விஷே. एक श्लोक आया है युज्यमाने नपत पंच भौतिक युज्यमाने पार्श्वदे युज्यमाने श्लोक मुझे पूरा तुमको याद है नहीं? श्रीमद् भागवत है तो देख नारद जी के चरित्र में है पहले छठे अध्याय 28वें श्लोक 29वें श्लोक प्रयुज जमाने माने उनका परिकर का देह प्राप्त होने के बाद में नपतत पंच भौतिक उनका पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गिर गया. यहाँ पर श्रीमद् भागवत में जीव गोस्वामी की और सब जगहों में टीकाएं ऐसी है, ये जो पार्षद देह है ये वैकुंठ में जीव गोस्वामी के प्रति संदर्भ में शायद मुक्ति के संबंध में है कि वैकुंठ में वहां भगवान के ज्योतिर्ग से निकलकर कोटि कोटि सिद्ध परिकर देह है जब कोई सिद्धि लाभ करता है तो वो भगवान कृपा करके वहां का जो शरीर है अपराकृत वो इस जीव को मिला करके दे देते हैं. नहीं के प्रसंग में करता है पार्षद देव के ये पार्षद देव वहां है वैकुंठ में असंख्य है जो भगवान की ज्योति से प्रकाशित होता है और जब यहाँ कोई साधक सिद्धि लाभ करता है तो वो वैकुंठ वाला जो पार्षद शरीर जो निर्जीव सा रहता है उसमें जो जीव है जीव माने प्राण है या चेतनता है किंतु अचेतन जैसा पड़ा रहता है वहां. जब ये सिद्धि लाभ करता है तो वो अचेतन जैसा किंतु चिन्मय शरीर लगते ही फिर वो क्रियारंभ करता है उसी शरीर से भगवान की सेवा करता है. जीव गोस्वामी का प्रति संदर्भ में ऐसा उल्लेख है किंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये सप्तम गोस्वामी है गोस्वामियों से कम नहीं है. विनोद मंजरी भी है कमल मंजरी भी है उन्होंने ये कहा है कि जीव स्वरूप में जो नित्य परिकर हैं जो बलदेव जी से प्रकटित हुए हैं कोई गोलोक वृंदावन में कृष्ण की उससे सेवा कर रहे हैं नित्य सिद्ध शरीर से और कुछ लोग द्वारका में और कुछ लोग वैकुंठ में ये सभी नित्य हैं और परिकर वहां पर जीव शब्द का उल्लेख नहीं, वहां पर सभी परिकर कहलाते हैं। उसमें कुछ साधन सिद्ध भी हैं, कुछ नित्य सिद्ध भी हैं, कुछ बलदेव के कायदी हैं प्रकाश और कुछ राधा जी के कायदी प्रकाश वहां पर। जो तटस्था शक्ति से निकले हैं उनमें कुछ जीव भगवान की तरफ में देखा वो भगवान की तरफ में चले गए, और जो जगत की तरफ में देखा उससे आकर्षित हो गए इसमें। किंतु उनमें भी जीव के स्वरूप में जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो है किंतु पोटेंसी के रूप में है। जैसे बीज में सारा वृक्ष उसमें रहता है, फल फूल ये सब कुछ है, ऐसे उस पोटेंसी में जीव के सब कुछ है किंतु विकसित नहीं है। जैसे बीज में वृक्ष विकसित नहीं हो ऐसे बद्ध जीवों में विकसित नहीं होता, वो गुरु की कृपा से क्रमशः साधन भजन के द्वारा जबकि रति की अवस्था में जाता है भावावस्था में, तो उसकी वो अनुभूति करता है। गुरु भी उसको बतलाते हैं ये तुम्हारा सिद्ध देह है, एकादश भाव उस समय में देते हैं और वो अनुभूति करता है उस समय। फिर चार पांच भाव और हैं पा करके इस जगत को छोड़ करके उसका नित्य जो शरीर है नित्य सिद्ध देह वो प्राप्त करता है। हमारे सभी गोस्वामी यहाँ तक कि बलदेव विद्याभूषण ने भी ब्रह्मसूत्र के गोविंद भाष्य में ऐसा लिखा है, जब हम बतला है ये कैसे जीव का स्वरूप नित्य है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बतलाया उसमें समस्त अंग प्रत्यंग सब चीन में है, जीव के स्वरूप में अभी भी पोटेंशियल के रूप में, और उनका कृष्ण के प्रति जो सेवा का भाव है सिद्ध देह का भाव वो सब उसमें है। अब जीव गोस्वामी के साथ में रिकॉन्साइल कैसे करेंगे। जीव गोस्वामी जो कह रहे हैं वहां पर परिकर देह है, जब सिद्धि प्राप्त करता है तो दोनों मिल जाते हैं, तब वो उससे के द्वारा सेवा कर सकता है, उसके पहले सेवा नहीं करता है, तो ये कैसे रिकॉन्साइल कर। श्याम दास बोलो बोलो माइक दे दो। पढ़ा है तुमने ये सब विषय संदर्भ देखा और जीव गोस्वामी का ये विचार और भक्ति विनोद ठाकुर का पढ़ा है भाष्य वो है? नहीं इसमें है शिक्षा ये पढ़ना जरूर। हाँ बोलो बोलो तो देखें ये बताए जीव गोस्वामी যখন এতটুকু বুঝতে পারবে না তখন আর কি বুঝবে অত করে বিস্তৃত করে। জীব গোস্বামী যা বলেছে পরিকর দেহ আছে বৈকুণ্ঠে, জীব সিদ্ধি লাভ করলে ওই জীবকে ভগবান ওইটা দিয়ে দেন, পরিকর মিলিয়ে দেন স্বরূপটা বৈকুণ্ঠে আছে, এইটা তো এখানে আছে। যখন সিদ্ধি লাভ করে তো ওই পরিকর দেহটা জীবের সঙ্গে প্রযোজ্য করে দেন মানে, আর এই পঞ্চভৌতিক শরীর পড়ে যায়। এখন অবধি তোমরা বুঝো নি পাগল বুঝতে পারো না তা। জীব গোস্বামী যা বলছেন উনার বিচার এক, আর আমাদের আর গুরুবর্গ যাহারা আছে উপর থেকে বলদেব বিদ্যাভূষণ থেকে নিয়ে আর ভক্তি বিনোদ ঠাকুর পর্যন্ত এক বিচার। ওরা বলছে যে জীব স্বরূপে নিত্য তার সিদ্ধ শরীর আছে, নূতন করে কিছু দেবার নাই, ও শুধু বিকাশ হলে মায়া কোন রকম সরে যাবে, ওর যা শরীর আছে এটি আমাদের সব আছে। কিন্তু জীব গোস্বামী বলছে যে তখন পর্যন্ত কোন কিছু নাই, ওই যখন পারকার দেহ পায় ওখান থেকে বৈকুণ্ঠ থেকে যে আছে ভগবানের জ্যোতি থেকে যে বেরিয়েছে ওইটা প্রয়োজন, যখন ওই পরিকর দেহ জীবের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় তখন জীব ভগবানের ওই শরীরের দ্বারা সেবা করতে পারে। আর আর গোচার যে বিচার আমি পূর্বে বলব, এখনো বুঝেছে কিনা, কুসব অনুশীলন না হলে কি বুঝতে পারবে? দিন রাত এইসব অনুশীলন করলে তাহলে এইসব কঠিন বিষয় বোধগম্য হবে। মাধব মহারাজকে তো আজকে সকালবেলা বলেছি, এই জন্য উৎপাত খারাপ করছেন যে আমি বলবো তোমাকে হাজার বার বলি কি একটা বাজে কাজ নিয়ে আছি মূর্খ অনর্থবান।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর
তোমাকে এসে বলতে
হবে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। আমি আপ লোক শ্রী মহারাজ কে মুখার শ্রবণ কে শ্রীজি গোসাই পাজি अपने सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं कि जीव जब अपने सिद्धि प्राप्त करते सिद्धि भी दो प्रकार के, वस्तु सिद्धि और एक स्वरूप सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि तो भाव का अवस्था तक भी उपलब्धि हो जाती है, प्रेम में तो पूर्ण रूप से उसका उपलब्धि किया जा सकता है। और वस्तु सिद्धि जब इस शरीर को सिद्ध शरीर के पाने के बाद जब किसी गोपी गर्भ में जन्म होता है चक्रवर्ती पाद जी का भाव किसी भी ब्रह्मांड में, और वहां पर उन्निश्चित परिकर के संग में जब उनका संग प्राप्त होता है तब जाकर के उस लीला में प्रवेश होता है नित लीला
में। गोविंद माधव माधव प्रियो इज हियर फेयर नो डाउट विल हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। बोलो
श्री चक्रवर्ती पाजी का भाव है, पहले तो हम स्वरूप सिद्धि करते साधन करते करते आदम श्रद्धा तथा साधन संगता भजन के लिए अनर्थ निरुद्ध निष्ठा विद्या शक्ति उसके बाद में भाव के अवस्था में जाके स्वरूप में कुछ उपलब्धि होती है, लेकिन भाव में भी कुछ कुछ कसाय रह जाता है, इसलिए आगे प्रेम में जाकर पूर्ण रूप से वो प्रकाशित हो जाता है। इसलिए इस जगत में केवल व्यक्ति में भाव तक ही देखा जाता है। नारद जी का जो बोल है प्रद्युत मानव भाव के अवस्था में उस शरीर को त्याग दिया, प्रेम तक नहीं पहुंचे, प्रेम के बाद में जब परिकर का संग हुआ उनका जो भी तब के बाद प्रेम से हम बोले अभी पक्के कसाया नाम दुर्दर्शो अहम कुजोगी नाम हंति मस्मिन जन्मनि न त्वांग मां मां दृष्टु मारत। आकाशवाणी में जब साधना में थे और भगवान के जब चिंतन कर रहे थे तो वहां भागवत में वर्णन आता तस्मिन निर्मले निर्मनुजे अरण्ये पिपलोपस्थ आस्थिता आत्मानं चिंतयन रूपं यथा कुलतय। जैसे उन्होंने गुरु मुख से सुने चतुर्मास के महीने में उसी तरह उस रूप को चिंतन कर रहे तो करते करते उनके अनर्थ की निवृत्ति हुई और भाव की जब अवस्था में आ गए तो उस समय एकदम उनके रोमावली खड़े हो गए। जो भाव के कुछ विकार है जैसे गुरु गोस्वामी जी कहते प्रेमस कुल प्रथम अवस्था भाव इत्यादि दीयते सात विकार स्वल मात्रा से अत्र अश्रु पुलका दे। उस समय उनके रोमावली खड़े हो रहे, अश्रु पुलक आदि हो रहे, भाव में विभोर होकर उस रूप के चिंतन में डूब गए, लेकिन कुछ क्षण बाद ही वो रूप अंतर ध्यान हो जब वो व्याकुल हुए तो ये सुनने को मिला अभी पक्के कसाया नाम दुर्दर्शो अहम कुजोगी नाम अब तुम इस शरीर से और मुझे दर्शन नहीं करोगे तुम प्रतीक्षा करो। यहाँ पर जब इस शरीर का पास होता है तो उस समय वो वस्तु सिद्धि को उपलब्ध कर स्वरूप सिद्धि को उपलब्ध करने के बाद जब जिस भाव वाले होते हैं जैसे कोई अगर गोपी भाव से आराधना करो सखा भाव से तो फिर व्रत परिकरों में जो निश्चित प्रकट जब आते हैं लीला जगत में मतलब अब प्रपंच जगत से जब प्रपंचिक जगत में लीला के लिए जब उतरते हैं जैसा कि सभी आचार्यों का भाव है प्रपंचात प्रपंच अवतरणम इत्यादि लीला अथवा अवतार होते हैं तो वहां पर वो जब जन्म ग्रहण करके उनके अपना सब परिचय मिलता है सही रूप में और जब वो रास आदि में प्रवेश करते उसमें जो माया में पूछते तू कहाँ के तुम्हारा माता जी का क्या नाम है पिताजी का क्या नाम है इस प्रकार से वहां पर सिद्धि को वस्तु सिद्धि को प्राप्त करते। पृथ्वी महाराज एक बहुत सुंदर बात बतलाए जिस समय उनके यज्ञशाला में भगवान प्रकट हुए जब वो 99 यज्ञ कर चुके थे सोमा करना चाहते थे लेकिन इंद्र करने नहीं देना चाहते बार बार घोड़ों को चुरा लेते कई बार उनको मार करके कई बार कई भावों से घोड़े को लौटा कर लाए और बार बार उसने रूप बदला तो वहां पर जब भगवान उनसे बोले कि तुम्हें 100 जग की क्या जरूरत है, 99 ही रहने दो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो। तो उसमें फिर तुम महाराज जी बहुत अच्छी बात बतलाए, वहां बोले भगवान मुझे नहीं कुछ चाहिए, ना कामे तरफ हम ना तो कुछ न जत प्रजुस्मत करना मुझा सब महत्तम अंतर भयान मुखा चुतो विदत सबो करना अजूत में एक समय बारा। और उसके बाद में जद उत्तम अश्लोक भगवान ममे रितम स्मृति पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमान कुजोगी नामनो वितरत आलम्बरे। कहते जद उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो भवत पदाम भोज सुधा कना लीला। अगर आपके भगवत भक्तों के संग में आपके कथा में सुनने को मुझे मिलता रहे तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, केवल इतना वरदान दे करना अजूत ए समय बरा। बोले कथा क्यों सुनना चाहते हो? बोले उससे ये होता है स्मृति पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमान। हम लोग जब भगवान से बिछुड़ के माया को जब आए और माया ने जब झपट के पकड़ा, निकट माया सारे झपटिया धरे, जिस समय पकड़े तो उस समय जीव क्या हुआ अपनी स्मृति को विस्मृत कर गया। जब तक वो माया नहीं पकड़ी तब तक तो ठीक था, समझता था सब कुछ, लेकिन जैसे माया को आया तो क्या विस्मृति। तो बोलते हम जो विस्मृत हो गए उस विस्मृति को गुरु वैष्णव लोग स्मृति दिला देते। चैतन्य चरितम में एक बात आया, नित्य कृष्ण प्रेम सार सबुना। ये जो कृष्ण प्रेम जो हमारा प्रीति सिद्ध है, ऑटोमेटिक हमारा जो महाराज जी बोले थे भगवान के साथ संबंध है, लेकिन उस संबंध को हम विस्मृत हो गए। कब विस्मृत हुए? जब माया ने पकड़ा। अब है ना सही अनादिर मई मुख आता है माया तार दे संसार दुख। जब जी उनसे विमुख हुआ तो माया ने पकड़ा, पकड़ा तो जो स्मृति था उस स्मृति में चला गया। इसलिए हाँ रूप गोस्वामी जी यही बोले भक्ति रसम स्मृति क्या कृति साध्या भवेत साध्या भावा तो साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य मृति साध्यता। ये जो हमारा भाव क्या नित्य सिद्ध है, इस बात को ध्यान दीजिए। भाव कोई सिद्ध करने की वस्तु नहीं, सिद्ध है हमारा जो सेवा सिद्ध है, लेकिन वो विस्मृत हो गए। उस विस्मृति को गुरु वैष्णव लोग कथा के माध्यम से जगा देते हैं। जैसे सूर्य बतांग स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय स्थान ही भद्राणी बुद्धि मोती सार्थम। और जितना जितना हम कथा सुनते जथा जथा मृजत्व आत्मा मत पुण्य गाथा श्रवणा विधाने तथा तथा पस्तति वस्तु सूक्ष्म चतुर चतुर्थैव अंजन संप्रयुक्त। जितना जितना भगवान की कथा सुनेंगे उतना उतना हमारा चित्त जो क्या होगा शुद्ध होगा। अशुद्ध होते के साथ अनर्थारी निर्वृत्ति के अलावा जब भाव की स्थिति में आएगा तो हम उस सूक्ष्म वस्तु को अपने स्वरूप को जब दिखाई नहीं पड़ रहा है वो दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महाप्रभु जी सभी आचार्यों ने बोला उस स्वरूप उस उपलब्धि के लिए जो हम भूल चुके उसकी स्मृति के लिए सबसे बढ़िया उपाय है भगवान के नाम कीर्तन। इससे और कोई संसार में दूसरा वस्तु नहीं चित्त को शुद्ध करने वाला, लेकिन ये नाम संकीर्तन तभी पूर्ण फल देने में समर्थ है जब साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए।
तुम ऐसा जो ऐसा कर रहे थे 5 दिन में
अभी 1 घंटे में खत्म
कर। इसलिए ये सब जो मूल विषय है उस पर आओ, ये तो तुम 10 दिन में नहीं समझ।
यहाँ पर जो हमारे स्वरूप उपलब्धि उसके करने के उपाय है नाम संकीर्तन। उससे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृतास्वादनम सर्वात्मस्म परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आपको जो भी चाहिए सबसे बड़ी चीज हम जिस चीज को भूल गए अपने स्वरूप को, उस स्वरूप के नाम जो भगवान की कथा को स्मृति दिला देते हैं। लेकिन स्मृति तभी हो सकती है जब वैष्णव संघ में एक कथा सुनेंगे। इसलिए पृथ्वी महाराज जी बोल रहे हैं कि महत मुखच्युत महापुरुषों के मुखारविंद से यदि निर्धारित कथा सुनने को मिलता रहे तो अलम बरे। संसार के फिर कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी वस्तु की स्मृति पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमान। जिस तत्व को जिस स्वरूप को हम भूल गए हैं उसको स्मृति करा देते हैं। ये दोनों आचार्यों के जो अपने अपने भाव है, अच्छा एक जगह पर बोल रहे हैं कि साधन करते करते भाव तो साधन की अवस्था, भक्ति तो साधन की अवस्था से आस्वादनीय है। स्वरूप मिलने के बाद तो हो गए, लेकिन अभी भी जो कर रहे हैं वो भी कोई मतलब है नहीं, लेकिन अंतर इतना होता है पक और अपक में विचार। अभी कच्चा थोड़ा स्वादन हो रहा है और जब वस्तु स्थिति हो जाएगा तो पक्का स्वादन होगा, वहाँ पूर्ण रूप से स्वादन हो रहा है, यहाँ स्वादन हो रहा है लेकिन परिपूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कर्मस कसाय आदि है जिसमें मिश्रित भाव से स्वादन होता है। तो जीव गोस्वामी जी का जो भाव है वो भी कहना ठीक है कि जब तक आप उस स्वरूप को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वो वस्तु स्थिति नहीं मिलने वाली, तब तक जब तक उस स्वरूप के साथ जो हमारे वहाँ गोलोक धाम वृंदावन में जो एक रूप पड़े हुए हैं उसके साथ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वास्तविक स्वादन नहीं होगा, वो भी ठीक है। लेकिन साधन की अवस्था में भी इस चीज का स्वादन किया जा सकता है क्योंकि भक्ति चिन्मय वस्तु उसका थोड़ा भी टच करेंगे तो भी वो परम परम स्वादनीय है लेकिन उसमें महा महास्वादनीय होता है। तो दोनों का कहने का अपने अपने जगह पर ठीक है, बाकी महाराज जी जो कुछ बोलेंगे वो भी।
इसमें एक प्रश्न होता है।
हाँ जी,
प्रश्न ये होता है कि यदि जीव का स्वरूप वैकुंठ गोलोक में वहाँ सुरक्षित है और जीव यहाँ पर है तो वो पारकर शरीर और ये अलग अलग हुए,
अलग अलग, ठीक
है, अलग अलग हुए।
हाँ जी,
किंतु हमारे गोस्वामी कहते हैं जी अलग नहीं, जीव के स्वरूप में ही सब कुछ है, तो इसका सामंजस्य कैसे है?
ऐसा चिंत वस्तु के बल तो सर्वगत है, आत्मा जैसे सर्वगत है तो अवस्थित हो सकते,
ये उत्तर नहीं है।
हाँ जी,
ये उत्तर नहीं है। आप बोलिए तो कुछ, तुम लोगों के समझ में कुछ आ रहा है खाक पत्थर कि नहीं आ रहा? हाँ, तो वही नहीं बोला था। अच्छा, हम चाहते हैं समझ तुम्हें कुछ बोल बे
के विषय में
जब इसमें है तो यही तो कहा मैंने,
आप बता दीजिए,
तो इसीलिए तो बतलाने के लिए तो बोल का
मतलब
लोग समझे, प्रश्न ही नहीं समझ पाए।
नारद जी ने कहा, नारद जी के विषय में जो वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, प्रयुज्य आरब्ध कर्म निर्वाणो नपतत पंच भोग प्रजुज्य माने मई त्वाम शुद्धाम भागवती कर्म। जबकि श्री नारद जी भजन साधन कर रहे थे, भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि हे नारद, तुम्हारी उत्कंठा के वजह से मैंने तुम्हें दर्शन दिया, इस जन्म में तुम साधन भजन करते करते उस समय की प्रतीक्षा करो जबकि सत्सेवया अदिर्घया दीड़ा मई जाता नहीं, अति अल्प काल में सारे संतों की सेवा करते करते मेरे बीच में तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाए, दीर्घमती हो जाए, सुदृढ़मती हो जाने के बाद में तुम मेरे पास आ जाओ, मत जलताम गंगा से मेरे प्रिय परिकर बन जाओगे, मेरे निकट में आ जाओगे, ये बता दिया। इसके बाद में श्री नारद जी ने मंत्र जप किया और हरिनाम करता रहा और करते करते काफी समय निकल गया और समय की प्रतीक्षा, तब उस समय वर्णन आता है प्रजुज्य माने मई त्वाम शुद्धाम भागवती कर्म। उस समय नारद जी कह रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा पांचों भद्र शरीर जो पिंजरे के रूप में यही पड़ा रहा और इसमें से मैं पंछी की तरह निकल करके चला गया, मेरा शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया भागवती चरण, वह दिव्य शरीर जो जगन्मय स्वरूप भागवती स्वरूप मैंने जो पार्षद देह, उस पार्षद देह में एक भगवान के लोक हो गए। अब देखा जाता है कि साधु के द्वारा यहीं पर उनका स्वरूप प्रकट हुआ है, वहां जाकर के उनको मिलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, परंतु यहीं से प्रकट। दूसरी बात है, जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया 11वां स्कंद के अंत में, जबकि प्रभास में वे जाने लगे नित्य धाम को, जाते समय जो अंतिम श्लोक आता है उपदेश का जो अंतिम श्लोक, उसमें ये वर्णन आता है मर्तो यदा तत् समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो उसमें एक अच्छी बात आई है इस जन्म की इस मानव देह को प्राप्त होकर मनुष्य गुरु चरणों में शरणागत होता है, जितना जितना अपने को आत्मसमर्पण कर देता है उतने परिवार में भगवान भी उसको अपना लेते हैं। और विचित्र से तो विशेष कुछ किया करते हैं भगवान, भक्तों के लिए विशेष करते हैं। वो विशेष क्या करते हैं, भक्त सोचते हैं कि मैं इस प्राकृतिक शरीर से इसी शरीर से ही भगवान की सेवा किया कर रहा हूं, और इस पांचवंते शरीर से भगवान की सेवा किया नहीं हो पाती। वो तो शुद्ध हृदय से शुद्ध भाव से ही शुद्ध स्वरूप से ही होता है, परंतु भक्त समझते हैं कि हमारा पांचवंते शरीर है यही, और इसी शरीर से ही हम कर रहे हैं, परंतु करते हैं आत्म शरीर से, भावना होती है कि मैं इस शरीर से कर रहा हूं, परंतु ये भगवान उसके स्वरूप को प्रकट करा देते हैं और मंत्र जप के साथ साथ साधना के साथ साथ उसका स्वरूप प्रकटित होता है, उसका विकास हो जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है वो कुछ भी नहीं जानता, ये बच्ची, और जब आगे बड़े बड़े हो जाए किशोर किशोरी बन जाए तो उस समय उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, संसार का पूर्ण अनुभव आने लगता है। भक्ति राज्य में जबकि आसक्ति की स्थिति में पहुंच जाता है, निष्ठा रुचि आसक्ति में, तो उस समय उसको पूर्ण अनुभव होता है, भाव का भी पता लगता है और आगे का स्थिति सारा जानकारी होता है। तो उस समय बोले कि साधन भजन करने वाला व्यक्ति उस समय साधन के स्थितों में तदा मृतत्व अमृतत्व को प्राप्त होता है। अमृतत्व क्या है, पांच प्रकार के भाव, शांत दस सुषम प्रभात संगम, ये पांचों अमृत के रूप में वर्णन किया गया है। इनमें से साधन जीव कोई न कोई एक भाव को प्राप्त कर लेता है। अब कहा गया जैसे उसके स्वरूप का विकास हुआ, स्वरूप के विकास के साथ साथ उसके हृदय में वो भावना भी प्रकट होती है, कोई न कोई एक भाव कृष्ण के प्रति एक निष्ठ होकर के प्रकट होती है, उसी को अमृत। अब महाराज जी का जो कहने का है, प्रश्न जो आया है कि जीव के शुद्ध स्वरूप और उसका जो बीज रूप में सन्निहित है शुद्ध भाव इत्यादि सब कुछ बीज रूप में सन्निहित है, अभी कोई विकास नहीं हुआ, जबकि साधन भजन करते हैं साधन भजन के द्वारा धीरे धीरे विकसित होता है। हाँ ये बात सत्य है, गुरु का गुरु की कृपा और भगवान की कृपा तो नहीं सन्निहित, जैसे शुद्ध सत्य के बारे में वर्णन हुआ है कि भाव दशा की प्राप्ति होती है। शुद्ध सत्य क्या है कि लागने एवं संवित के सार्वत्रिक स्वरूप जो कृपा करुणा है वही हृदय में आती है। वो कृपा करुणा किसकी है, दादाजी, सीधे रूप से दादाजी की कृपा करुणा हृदय में आ जाए वही शुद्ध सत्य। अब कहने का है वहां से आता है यहाँ से प्रकट होता है, साधन भजन के द्वारा जीव का ये शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। जब शुद्ध स्वरूप का प्रकट होता है उसके अंदर का जो भाव है वो प्रकट होता है, विकसित होता है। तदा मृतत्वम प्रतिपत्तम मयात्म भूयाय च कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त होकर के जब उत्कंठित होकर के भजन करता है उसके अंदर विरह उत्कंठा बढ़ जाती है कि एक साधक भक्त भगवान के सानिध्य में पहुंचना चाहता है, जबकि पित्र विरह उत्कंठा लालसा बढ़ जाती है उस समय भगवान क्या करते हैं, मयात्म भूया देव कहते हैं कि मैं अपने समान बना लेता, उस समय उसको पार्षद बना करके मैं अपने पास ले आता और मेरा परिकर बन जाता है, मेरी समता को प्राप्त होता है, यानी मेरे परिकरत्व को प्राप्त हो जाता है। तब देखा जाता है कि साधन भजन के द्वारा वो बीज रूप में सन्निहित जो वस्तु है वो विकसित होता है, विकास के साथ साथ भगवान भी उसमें जोड़ते हैं। इसलिए दोनों का कहना सही होगा कि वहां से भी कुछ कृपा शक्ति करुणा शक्ति आती है जिसके साथ मिलने पर तभी ये विकसित होता है। शुद्ध सब सब कुछ है परंतु आज विकसित नहीं है, जब तक गुरु जी कृपा करके जब खींच करके लाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हुए कहा हमें कोई पता भी नहीं, कौन भगवान है, कौन महाप्रभु है, कौन राधा जी है, कौन कृष्ण है, किसी का कुछ भी बताना पर साधु है ये भी जानते नहीं। जबकि यहाँ ला करके कैसा दर्शन करके अपने चरणों में स्थान दिया, समझाया, इतने दिन पढ़ते पढ़ते आज हम लोग कुछ समझ रहे हैं कि ये जीव है वो मुक्त जीव है, ये बद्ध जीव है, दुनिया भर के इस सुनने लगे समझ। पर तो इससे पहले तो कुछ पता नहीं, इस गुरु की कृपा से ही सब कुछ विकसित होता है। अन्यथा जीव का स्वरूप तटस्थ सत्य के रूप में जो दिखाया गया, तटस्था शक्ति से जीव आया, ठीक है। परंतु तटस्था शक्ति का मतलब क्या है कि एक न्यूट्रल अवस्था जिस स्थिति में कोई भी विकास नहीं है, न उस पार में गया न इस पार में आया, विकास भी जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाया, छांदोग्य में दिखाया, उपनिषदों में ये सब वर्णन आया है सृष्टि प्रकरण में, ऐसे तृतीय स्कंद भागवत में भी इसका वर्णन आया है कि जैसे अनंत बड़ा जीव पड़ा हुआ है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है न विकास हुआ है। जबकि वेदांत में गोविंद भाष्य में भी कहते हैं ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म पांचों तत्व का वर्णन किया है, तो उसमें जब ये वर्णन होता है कि जीव तो उसी अवस्था में सूक्ष्म अवस्था में पड़ा हुआ है, उसका कोई इच्छा भी नहीं। जब भगवत इच्छा होती है तब यहाँ आकर के जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में उसका विकास होता है, कर्म जगत में आ करके धीरे धीरे विकसित होते होते चेतनता का विकास होते होते मानव चेतना में आते। इसी बात को चेतन शिक्षा मंत्र में श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, पांच प्रकार के चेतन के विषय में बना है। मनुष्य जीवन में विकसित चेतन लिखा है और आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश होता है तो पूर्ण विकसित चेतन तो पूर्ण विकसित चेतन में जब के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है तब पूर्ण विकसित होता है। इसी तरह से चेतन का विकास होता है और मानव जीवन को प्राप्त होता है। और मानव जीवन में आकर के यहाँ गुरु जी के चरणों में आकर के यहाँ शिक्षा लाभ करके योग्यता को प्राप्त किया जाता है। सारी सेवा की योग्यता सब प्रकार की क्वालिटी यहाँ योग्यता प्राप्त करने के पश्चात
तो क्या करे ढोली बजाएगा तटस्थ से जो निकले हैं वो जी तटस्थ से कुछ लोग तो वो बतलाए ना, जैसे वो तो जल भी है स्थल कोई सुख छरे, जल बढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा, जल पीछे घट जाएगा तो नीचे आ जाएगा, इस पर वो निर्भर।
अच्छे जो बात नहीं बताए नहीं थे, ये बोल रहे यही पर स्वरूप हो जाते हैं उत्पादन और करो कर उसमें मिलने के बाद होते हैं उनका एक ही सेंटेंस में सब होते हैं सही समझना।
अच्छा हम मतलब तो थोड़ा सा बोलो जो क्या था उसका सार क्या है और हमने कैसे सामंजस्य किया है बोलो तो अंग्रेजी में थोड़ा सा बोल दो ये लोग समझे कुछ। बहुत अच्छा तुम्हारा सामंजस्य ठीक है, किंतु उसको भाव पर ये बोला है ठीक सर, थोड़ा सा प्रकट नहीं हुआ है अच्छी तरह से व्यक्त, किंतु बोला है सब ठीक। प्रयुज्य माने दोनों को मिलाकर क्या भगवान की कृपा या गुरु की कृपा, एक तो ये हुआ, हजार साधन करने से भी नहीं हुआ तो ये साधन का परिश्रम और भगवान की या गुरु की कृपा दोनों मिलने पर परिकर स्वरूप उसे भगवान की सेवा करना। अब इसको व्यक्त करके करना है, कोई भी लौकिक भाषा अप्राकृत तत्व को व्यक्त करने में असमर्थ, उसमें कोई ना कोई त्रुटि रहे, कोई जीव गोस्वामी बोले या स्वयं भगवान बोले या कृष्ण बोले,
वो तो अप्राकृत तत्व तो कहेंगे, अप्राकृत जो व्यक्ति है वो तो समझ जाएगा, किंतु प्राकृत व्यक्ति नहीं समझेगा, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तटस्थ कहने से भी कुछ त्रुटि है। और जो कुछ कहते हैं कृष्ण की लीला हुई तो इसके पहले नहीं थी, और दूसरी बातें आ गई, इसलिए प्राकृत भाषा में कुछ मल है, साधन के द्वारा इस मल को दूर करके उस चीज की अनुभूति। भक्ति विनोद ठाकुर ने जय उदाहरण इस विषय में प्रश्न अधिक मत करो, साधन भजन करो और भगवान की कृपा होगी, अनुभूति होगी। मैं पीछे बतलाऊंगा ऐसा ये बोल।
तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फर्स्ट ऑफ ऑल I pay my humble obeisances at the lotus feet of my conjugal Gurudev and all assembled sannyasis and Vaishnavas here and Vaishnavis who are very eagerly waiting to listen from Gurudev's lotus feet Samharikatha. In the middle, in between that, I am an obstacle to take some time of you, but which Gurudev has ordered me, I shall try to explain at my level best.
What is the question first?
So the question is, Srila Jiva Goswami Pad, one of the six Goswamis, he told that when Jiva is doing sadhana here and in Vaikuntha planet, means Vaikuntha, Ajodhya, Dwarka, Mathura, up to Goloka Vrindavan, there are some parsers. They came from affluence of Bhagavan, but they are in inactive position. When we will do bhajan and we will be perfect, then we can get any one of that parsa deha which is in Vaikuntha planet in inactive position. This one side. Another side, other than Jiva Goswami Pad, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, even leaves, flower and fruits, everything is there, but in seen in latent position, not in manifested form. So, one side is Jiva Goswami Pad, another side other acharyas up to present Guru Varga. So it seems both are quite opposite. How I can reconcile these two points, two contradictory points? Actually, these two points are not contradictory at all. We are in mundane stage, the material platform, so we do not understand, it seems contradictory for us. But who is in that platform, or Guru Varga, for them, no contradictory at all. So which you have heard from Gurudev, I try to explain. Srila Bhakti Vinod Thakur, in the commentary of Sikshastra in first slok, Chita Darpana Marjanam Bhava Mahatabhagni Nilbhavanam श्रेय कैलव चंद्रिका वितरणम विद्यावत जीवनम आनंदमुति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम यह प्रतिपदम पूर्णामृत साधनम भाव स्टेज इन दिस श्लोक देयर आर सेवन स्टेजेस एक्सप्लेन फ्रॉम चेतदर्पण मार्जनम श्रद्धा निष्ठा अनंत निति भजन क्रिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा अप टू प्रेम इन सेवन स्टेज एक्सप्लेन इन वन वन पार्ट Here, Purnamrita Sadhanam, this is Bhava stage. So, Bhakti Vinod Thakur told and explained in his commentary, according to Sadhak's constitutional form, after Gopika Deha Eva Prakatayati, who has Dasa Mood, is Dasa Bhav, Dasa Parsat Sarili manifest, who has friendly charm, who has paternal charm, who has calmer mood, will manifest in their heart according to their own constitutional form, which is in latent position at present time. It will manifest. Srila Baladeva Vidyasagar Prabhu and Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur and others, all they told same thing. And Jiva Goswami Pada told, no, there are some parts of there in Vaikuntha planet. When you do bhajan, then it, and in perfect, then you can get one body from there and it will contact both. We have seen in Narada Maharishi's character, the Napata Pancha Bhoktikam. His material body was off and he received Parsad Deha and his material body followed. So here, how we can reconcile this? Srimad Tirtha Maharaj quoted one shlok that Marko Yadatapta Samasta Karmani Deitatma Vichikinshi Dome Tarantatta Patipadda Manu Mayapa Bhoya Chakalpate Boi. I can explain it later, but which is hard to do, I can explain. So, Jiva Goswami Pada and chapter 4, how we reconcile this and other acharyas? Is Guru Krishna Prasad Brahmanda Bhamite Karno Bhagavanji Guru Krishna Prasade Maya Bhukti Lata Beach. When we are wandering in this Brahmanda, not in this, in the world of Brahmanda, any fortunate ji, with the causeless mercy of Guru and Vaishnav, Guru and Krishna, they receive the seed of Bhakti Lata. What is that? Desire to serve Krishna, desire to serve Sri Krishna. So, Guru Krishna, here Guru Krishna means two meanings. One is Guru, Sri Gurudev, and Sri Krishna. One meaning, another meaning, Guru is Krishna here. What kind of Krishna? Ashray Krishna. Vishay Krishna is Sri Bhagavan, Ashray Bhagavan is Gurudev. So, sometimes mention the causeless mercy of Gurudev, sometimes mention combined causeless mercy of Sri Guru and Sri Vishay Bhagavan. We can get Bhakti Lata Beach. When we do sadhana bhajan, gradually it will increase in our position, then when it has achieved bhavavastha, then what it will be? In bhavavastha, sukna sapta visheshatma, prema surjansi sammabhag, ruchi vishchitta masrino upidasa bhava uchyate. What happened in bhavavastha? Samvitan bhadini, combined Sambhidan Sradhini, when the reflect in Sandhini means the entity or existence of Jiva, then it is called Bhavavastha. From where did you come? This Suddha Sattva or the essence of Sambhidan Sradhini, it lives, it always resides in the eternal associates of Sri Krishna. From there, it will manifest in our heart by the causeless mercy of Sri Gurudev and Sri Krishna. Then we can understand our own sorrow. Before not that, we can only imagine a little bit. So, what he was saying is that they will get that sorrow. There are so many types of Bhagavad person is there. And we can get one of how? Just like Bharata Maharaj, when he get loss of his baby dear, he was thinking and thinking about that and absorbed so much. After his death birth, he became a deer. But not became the same deer, he became another deer. Similarly, by causeless mercy of Gurudev and Krishna, when you sadhana bhajan here, and by causeless mercy of Gurudev, which you have heard Harikatha from him, then you can understand gradually, before even half day, what will be our swarup, we can understand which bhav, dasya or sakha, bhaksala or mudhu. When bhavavastha will come, then will manifest. Similarly, which parsata is there, we will think samar dasya, samar sakha, samar bhaksala, samar mudhu. When we do bhajan, then gradually gradually Hari matures says, then we can achieve their mood, which in eternal association in the planet of the Golok Vrindavan. So Jeev Goswami is telling we can get one parsha there from there, not parsha there, we can get their mood. So here Jeev Goswami will tell what we get, the mood of there, which there is resided in the Vaikuntha planet. So if we reconcile in this way, then we will get their mood.
उस सिद्ध देह ये प्राकृत है या अप्राकृत जीव का? जीव का स्वरूप जैसा भी हो अभी लेटेंट अवस्था में होने पर अप्राकृत है। अप्राकृत होने से वो बैकुंठी या गोलोक वृंदावन हुआ, किंतु अभी कवर्ड है इस जगत में। वही परिकर स्वरूप भी जीव का स्वरूप में है, बद्ध होने पर भी है, मुक्त तो कर ही रहे। बद्ध अवस्था में भी हम लोगों के अंदर में सिद्ध शरीर है किंतु छिपा हुआ है। वो प्रयुज जमाने भगवान की करुणा और इधर साधन भजन, दोनों प्रयुज जमाने, दोनों जब एक साथ में मिलते हैं तो वो जो परिकर स्वरूप सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध देह है, उस समय में प्रकटित होती है, माने विकसित होती है और अनुभव की वस्तु होती है पहले अनुभव में। समझ रहे वही तो नित्य सिद्ध जो हमारा स्वरूप है, यहाँ पर अनुभूति का विषय विकसित होता है तब जीव उस स्वरूप को समझता है, अन्यथा अभी तक नहीं समझा।
भाव की अवस्था
में इसको प्रयुज जमाने,
जब तक वो नहीं आएंगे तब तक,
इसलिए वो केवल भाव नहीं मत कहो, केवल भाव नहीं, वो भगवान के कृपा से नित्य सिद्ध स्वरूप जो अप्राकृत गोलोक वृंदावन का ही है का स्वरूप। अब तब ये नित्य सिद्ध भाव से प्रकट
नहीं,
यहाँ है किंतु वो है गोलोक वृंदावन का। अब जुड़ना नहीं है, वो तो एक ही है, जुड़ेगा क्या? अनुभूति
जीव से प्रवेश करते हैं।
नहीं नहीं नहीं, प्रयुज्य माने जीव का स्वरूप नहीं, और वहाँ पाकर इसका प्रयुज्य माने नहीं कहा। भगवत कृपा और इधर साधन, ये दोनों जुड़ने पर वो अनुभूति विकास की अवस्था में अनुभूति उसकी होती है,
लेकिन फॉर्म वही रह जाएगा।
नहीं समझा, नहीं समझा। भाव और सिद्ध स्वरूप शरीर मन जो कुछ है अप्राकृत है, जो शुद्ध सिद्ध देह है वो विकसित होकर के अनुभूति का विषय यहाँ पर।
So which we have constitution of form, this also transcendental, but now unmanifested form. By causeless Manishad Guru and Vaishnava it will manifest in our heart, then we can realize, that's called Anubhav Vedya, then we realize in bhav state, not before that. So what is explained in Srimad Bhagavatam Prayujya Mane, it will come to actually manifest. So in this world, the material language could not express transcendental thing. Which you want to explain, some thought bound to be there. But who is in transcendental form, they can understand very clearly. But due to our own state, we are so absorbed in material thing, we could not understand. So when we develop in southern stage, in southern bhajan, then you can understand and can realize when we achieve in bhav stage. My process, Master Guru and Goswami, is only manifest in our heart, Shuddha Sarva, then we understand, because which we have, our Shuddha Sarva, in constitutional form, but in latent position, that is transcendental. When we manifest, then we can realize only that thing. This is called Vajijyamani. So you have to suffer and have to pray. Now, when you contact both, then you can understand. Just like Mother Yashoda, Krishna Parishama Krishna Kripya Sitsa Vandhane. So Maharajasa, he was trying to find Krishna, and when Krishna saw her level, then his heart melted. Similarly, you have to do sadhana bhajan under guidance of Guru and Vaishnavas. When they will saw that we are now doing we want this thing only, not more than that. Asahi dasya visabhanu jaya, then they become causes merciful and they will manifest his bhavavasa, then we can understand, realize all this thing, Hare Krishna.
जीव का एक सिद्ध देह है, कब से है? जब से जीव का गठन हुआ था। तो जीव का गठन कब हुआ? प्राकृतिक काल में। जब से है तब से जीव का एक सिद्ध शरीर है, देह है, जिसे कि वो भगवान की सेवा करता है या कर सकता है। तो ये सिद्ध देह और जीव अलग अलग नहीं है, वहां नहीं दे दे देने। इस शरीर से तो उसका भेद है,
लेकिन आत्मा में कोई देह देही,
आत्मा में देह देही का भेद नहीं। उसका अनुभूति उसकी कब होती है? भगवान के कृपा से, गुरु की कृपा से, और साधन भजन करते 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 वो जो नित्य सिद्ध शरीर या भाव है वही दीक्षित होकर के अब अनुभव में आता है, जिसको अब हम लोग अनुभव करते हैं। एक बात और समझने से ये चीज समझो, प्रयुज्यमाने मई तान शुद्ध, क्या बोला तब नारद जी साधन भजन किया। साधन भजन के बाद में भगवान का उनको क्षणिक अल्प के लिए दर्शन हुआ, फिर अंतर्ध्यान हो गए तो ये छटपट आकाशवाणी हुई कि कुछ कषाय तुम्हारे अंदर। जब तक ये कषाय दूर नहीं होता तब तक हमारा दर्शन हमने कंठा बढ़ाने के लिए विशेष रूप में तुमको दर्शन दिया है। अब दर्शन नहीं होगा जब तक कि वो कषाय शुद्ध रूप में दूर नहीं हो जाएगा, वस्तु सिद्धि नहीं हो जाएगी, स्वरूप सिद्धि से भी नहीं होगा, वस्तु सिद्धि हो जाएगी तो तुम हमारा सब समय के लिए दर्शन करेगा, हमारी सेवा करेगा। अब यहाँ पर नेपथ्य पंचभौतिक माने क्या? पंचभौतिक उनका जो शरीर था गिर गया। अच्छा, नारद जी जो साधक भजन कर रहे थे और अंतिम समय में श्रीमन सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि च जानी लोके गीतानि नमानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरे, असंग विषयों से अनासक्त होकर के बिना यंत्र लेकर भगवान के आदेश सर्वत्र भ्रमण करते हुए भगवान का नाम और गुण गुण और कथाओं और लीलाओं का अपने गायनों में वर्णन करते हुए विचरण और समय की प्रतीक्षा, समय के अनुसार में जब उनका प्रारब्ध कर्म भगवान की कृपा से जब दूर हो गया तो साथ ही साथ क्या हुआ? नेपथ्य पंच वो जो नारद जी का जो पांच भौतिक शरीर था वो गिर गया, हट गया। किंतु हम देखते हैं सर्वत्र बिना यंत्र लेकर के वही नारद जो साधन दशा में जैसे दिखते थे वही तो सर्वत्र घूम रहे हैं। तो गिरा क्या? तो उनका पांच भौतिक शरीर था वो गिर गया, हमारे जैसे न क्या हुआ? नहीं, कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और वो देखो साधन भक्ति का पहला जो ये भाव है कृष्ण की सेवा करना है, तो कृष्ण सेवा की वासना ये मूल चीज है, ये साधु संशय कृष्ण सेवा की वासना ये क्या चीज है, ये स्वरूप शक्ति की सबसे छोटी माइन्यूट। अब यहीं से क्रमशः साधन भजन निष्ठा रुचि आसक्ति होकर के स्वरूप स्वरूप सिद्धि और फिर वस्तु सिद्धि होकर के। तो पहले से जितने परिमाण में भक्ति आती जाती है श्रद्धा निष्ठा रुचि, उतने परिमाण में जीव का जो स्वरूप है पांच भौतिक भाव हटने लगता है और साथ साथ में चिन्मय स्वरूप आने लगता है। जब नारद जी भगवान के दर्शन करने में रखे वहां है अर्थात स्वरूप सिद्धि में आते, स्वरूप सिद्धि में आते वस्तु सिद्धि में नहीं गए, तब वो गायन कर रहे हैं चारों तरफ में काल की प्रतीक्षा कर, उनका वही शरीर जो था आज भी सिद्ध रूप में हम देखते हैं, उनका कुछ पांच भौतिक से गिर नहीं गया, कोई घटा नहीं। उदाहरण के स्वरूप में हम लोग इसको कह सकते हैं और जैसे ये बतला रहा है जितनी जितनी भक्ति का स्टेज बढ़ता जाए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ठाकुर जी का ये दिया है, वो कुछ गोपियां अपने पतियों के द्वारा घर में आबद्ध करती है, उसमें से विरह तीव्रता भूता सुभा ध्यान प्राप्त अच्युता मंगला, और उनका भी प्राकृत जो शरीर था बहुत दूर हो गया, क्या है उसमें जहो गुणमय के गुण में शरीर को गोपियां कोई मरी थी नहीं, प्रताप से माने कोटि कोटि संसार के और ब्रह्मांड के जितने कष्ट है उससे करोड़ गुना कृष्ण के विरह का ताप, इससे अशुभ उनका अशुभ क्या था मंगल क्षीण मंगला, मंगला माने कृष्ण से विरह में जो कृष्ण की स्फूर्ति होती है इतना सुख होता है जगत विश्व ब्रह्मांड का सब वैकुंठ सुख को मिलाकर के उसके कोटि गुण करने पर भी उसके जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ उसी समय में उनका पशु था पशु मर गया विरह वाला दुख, वो उनका कोई पाप पुण्य वाला जो नहीं था ये मत समझ, जो कृष्ण का विरह ताप का था वो दूर हो गया कैसे उसी जगह जहां पर उसके पतियों ने उसको बंद कर रखा था उसी जगह कृष्ण आए और उनको आलिंगन पास में बद्ध कर दिया। अब वो तो उसमें से कुछ कुछ कृष्ण के रास में सम्मिलित हुए और जो अभी कुछ कषायत रह गया तो आज दो तीन दिन में पकने के बाद आम पकता है, सब 50 आम 100 आम पेड़ से निकाल लिया प्रौढ़ होने का तो एक ही दिन में नहीं पकता, कुछ आज पकेगा कुछ कल परसों तरसों पांच छह दिन तक रहता है। ऐसे उनमें से वो जो गोपियां थी विरह ताप वाली कुछ तो नित्य सिद्धा गोपियों के संग से पहले ही रास में चली और इनमें जो आरत जो उसमें थी तो कृष्ण के आलिंगन से वो योग हो गई और उस रात में रास में न होने पर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन रास में भी और जो बाकी आती गोपियां वो भी धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, किंतु हुआ सभी का एक अशुभ और है उनका जो खत्म क्या इनको अपने पतियों का संग नहीं मिला था और नित्य सिद्ध गोपियों का संग मिल गया वो तो रासस्थ है और जिनको बेटा बेटी और पतियों का संगम हुआ ये जो अशुद्ध है भगवान के मिलन में तो वो क्षीण मंगला और विरक्ताप वो सब धुल गया जो अशुद्ध था, अर्थात जिनको बेटा बेटी थी उनके स्तन में दूध थे वो सूख गया और बच्चों के प्रति जो आसक्ति थी और पति में वो पार्थिव भाव गया और वो जब पक गई कृष्ण के साथ वो गोपियां मरी नहीं गुणमय देह नहीं, माने उनका गुणमय शरीर नहीं था जो त्याग है, वो गोपियां जीवित नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो मर जाती तो अमंगल हो जाता, उनका गुणमय जो भाव था वो दूर हुआ। ऐसे ही यहाँ पर पांच भौतिक का जो भाव था नारद जी के हृदय में भी वो संपूर्ण रूप से धुल गया। क्यों? गायन करते करते फिर हमें उन्मत्त हो जाते, अशुभ इत्यादि होने लगा। धीरे 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 उनका जो ये कसार था कि हम कहीं निर्जन पन में हम तपस्या करके भगवान को पाएंगे, सात्विक वनवास करके भगवान का भजन करेंगे, माने साधु संघ को छोड़ करके ये भाव दूर हो गया। और फिर भगवान का प्रयुज्य माने यही भगवान की कृपा उन पर हुई, उनकी आत्मा विकसित हुई, ये जागतिक भाव सब दूर हो गया और नारद जैसे के तैसे और वो चिन्मय जगत में सब भी समझाया। किंतु समझना भी बिना कुछ सबको अध्ययन और बिना कुछ साधन भजन अनुभूति के लिए विशेष करके यही गुरु की कृपा है। कुछ लोग नहीं समझते, वो समझते हैं कि अपने मन से हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं होगा। साधन भजन जो गुरु किया है उसका फल तो है ना, ये कैसे मिलेगा हम लोग? ये बड़ा पढ़ लेंगे, शास्त्र से याद कर लेंगे, दूसरों को बोल देंगे तो खुद ही तो अनुभूति है, ये अशुभ और शुभ कहां से आएगा? यही सब यही भगवान की कृपा और अपना साधन भजन शुद्ध रूप से हो तो जीवन दोनों के मिलने पर उसका विकास होने पर पार्श्व ही यहाँ अनुभूति हो गया। बस इसी का और बातें प्राकृत भाषा अप्राकृत भाषा को व्यक्त नहीं कर सकते, वो भी कुछ साधन भजन करके गौ प्रमाण।
Thus ends the class on the 23rd of November 2002 in the evening in Mathura. Hare Krishna.